ओम शांति। आज का टॉपिक है होलिस्टिक थिंकिंग। तो होलिस्टिक थिंकिंग समझने के पहले हम थोड़ा थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान के कर्मों को देखा जाता है तो उस इंसान के कर्मों से उसकी थिंकिंग का आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि जो भी हमारे कर्म हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारे बोल हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट है हमारी थिंकिंग का। आपके कर्मों की क्वालिटी से पता चलता है कि आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है। तो हमारे पास थिंकिंग और हमारी सोच और हमारे कर्म दोनों हैं, लेकिन हमारे पास हमारे कर्मों के लिए चॉइस नहीं है। हमें क्या कर्म करना है वो कर्म के लेवल पे हमारे पास चॉइस नहीं होती है। हमारे पास चॉइस होती है थिंकिंग के लेवल पे, सोच के लेवल पे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे कर्म में चेंज होना ही है। उसको कर्म के लेवल पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर एक एग्जांपल ले कि कोई पौधा होता है, उसमें फल होते हैं और उसमें फूल होते हैं, उन फूलों और फलों की क्या क्वालिटी होगी वो फूल आने के बाद या फल आने के बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर उनकी क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए तो हमें उस बीज की क्वालिटी को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग है वो एक बीज है और बाकी जो कुछ भी हमारे बिहेवियर में आ रहा है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो यानी कि हमारी सारी पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारी थिंकिंग के ऊपर। और हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है, वो ना हमें दिखाई देती है ना ही दूसरे को दिखाई देती है। हमें तब दिखाई देती है जब हम अवेयर होते हैं, नहीं तो कई बार हमें भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन हमारे जो कर्म या बिहेवियर होता है वो हमें भी दिखाई देता है और दूसरों को भी दिखाई देता है। वो आउटर है और हमारी थिंकिंग इनर है। तो अगर हमारी थिंकिंग को चेंज करना है तो हमारे कर्मों को चेंज करना है तो फोकस होना चाहिए थिंकिंग के ऊपर। और थिंकिंग जो हमारी सोच है वो सोच को बनने का, वो सोच कहाँ से बनती है? क्योंकि अगर थिंकिंग को चेंज करना है तो पहले उन चीजों को चेंज करना होगा जो हमारी सोच को क्रिएट कर रही हैं। हाँ, डेली इनपुट्स, जो भी हम बाहर से जितने भी इनपुट्स ले रहे हैं, चाहे जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, वो सब इनपुट्स हैं जो हमारी थॉट्स को क्रिएट करती हैं। तो अगर सारा दिन की जो इनपुट हमारे अंदर जा रही है वो बहुत पॉजिटिव है, वो परमात्मा के महावाक्य हैं, वो कोई स्पिरिचुअल चीजें हैं, तो वो हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसको दिखाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो इनपुट अंदर जा रही है वो किसी भी तरह की गॉसिपिंग है या परचिंतन है, तो वो हमारे बिहेवियर में क्लियर दिखाई देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अंदर से नेगेटिव सोचते हुए हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी दिखा दें। तो इसलिए रूट को चेंज करेंगे तभी हमारे बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो थिंकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी पर्सनैलिटी उस थिंकिंग पे डिपेंड करती है। और थिंकिंग को जब हम ऐसे ग्रोथ लेवल पे क्लासिफाई करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में थिंकिंग को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है। कुछ लोगों को कहा जाता है थिंकिंग का एक टाइप है कॉन्क्रीट थिंकर्स। कॉन्क्रीट थिंकर्स माना ऐसे थिंकर्स जो सिर्फ सरफेस लेवल पे सोचते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, डीप में नहीं सोचते। और कुछ थिंकर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ थिंकिंग, जो लोग डीप जाके हर बात को देखते हैं। ये दो डिफरेंट टाइप है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक फ्लैग है, कहीं पे एक झंडा है, भारत का फ्लैग लगा हुआ है, तो जो कॉन्क्रीट थिंकर होगा वो उस फ्लैग को सिर्फ एक फ्लैग की तरह देखेगा कि हाँ इसमें तीन डिफरेंट कलर है, इसमें बीच में चक्र है और ये इंडिया का फ्लैग है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होगा उसकी थिंकिंग क्या होगी फ्लैग को देख के? चक्र तीन नहीं होते, कलर तीन होते हैं। तो वो सोचेगा कि इसमें ये जो तीन कलर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम हर कलर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि हरा कलर क्यों है, व्हाइट कलर क्यों है, और वो चक्र का क्या सिग्निफिकेंस है, इनका जो सीक्वेंस है वो ऐसे क्यों है कि ऊपर में ये कलर, मिडल में ये कलर, माना वो डीप में जाके उस चीज को सोचेगा। तो उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ थिंकर्स। कुछ लोग होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स, जो क्रिटिकली हर चीज को एनालाइज करते हैं, माना कोई भी बात आ गई जिसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाले लोग, जो क्रिटिकली सोचते हैं कि हर चीज में ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्रिटिकली हर चीज को एनालाइज करना। और कुछ होते हैं एनालिटिकल थिंकर्स। एनालिटिकल थिंकर माना हर बात का एनालिसिस करने वाले, हर बात में लॉजिक्स यूज करने वाले, कोई भी इंफॉर्मेशन जब उनको दी जाती है तो उसको स्टेप स्टेप में तोड़ के हर स्टेप का एनालाइज करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। जैसे हमारी जितनी भी साइंस की इन्वेंशंस हुई हैं, तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन सब ने बहुत एनालिसिस किया, बहुत क्रिटिकली हर बात को सोचा, तभी वो लोग इन्वेंशंस तक पहुंच पाए। जैसे न्यूटन के लिए एग्जांपल देते हैं ना कि वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने सोचा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो फिर उसने ग्रेविटी के लॉ को डिस्कवर किया। तो वो लोग बहुत क्रिटिकली और एनालिटिकली सोचते थे चीजों के बारे में। तो ये एक टाइप की थिंकिंग होती है। एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी हर चीज में, जो चीज वैसे लोगों को बहुत सिंपल लग रही होती है, क्रिएटिव थिंकर्स को हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखती है, हर चीज को जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है क्रिएटिव लोग उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से उसको चेंज कर देते हैं। जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, वो रॉक गार्डन में अगर कभी देखेंगे तो जितने भी स्टैचूज बने हुए हैं बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको कोई घर में रखे, टूटी हुई बैंगल्स, इधर उधर पड़े हुए पत्थर या बिल्कुल टूटे हुए प्लास्टिक के बॉक्स, कप्स, सबको जोड़ के उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाए। तो क्रिएटिव थिंकिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है वो रॉक गार्डन, जिसमें किसी ने अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया। तो कुछ लोग क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स। डाइवर्जेंट थिंकर्स माना एक ही बात के लिए वो कई सॉल्यूशंस दे देते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है कि इसको ऐसे भी ठीक किया जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो उन्हें कहते हैं कि उनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। और कुछ होते हैं कन्वर्जेंट थिंकर्स, जो एक सिचुएशन को या एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बारे में एक ही बेस्ट आंसर देते हैं, उस टाइप की थिंकिंग को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकर। तो ये डिफरेंट टाइप की थिंकिंग है। वैसे अगर देखा जाए तो शायद हर इंसान में हर टाइप की थिंकिंग पाई जाती है। किसी किसी जगह पे हम क्रिटिकल हो जाते हैं, किसी किसी जगह पे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, कहीं पे हम लोग सिर्फ सरफेस थिंकिंग करते हैं, कॉन्क्रीट रहते हैं, कहीं पे हम लोग बहुत डीप में जाके थिंकिंग करते हैं। हर इंसान में हर तरह की थिंकिंग पाई जाती है, लेकिन जो थिंकिंग हमारी डोमिनेट होती है वो थिंकिंग ही हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है, उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लोग हमें जज करते हैं। तो इन्हीं टाइप्स ऑफ थिंकिंग में एक टाइप ऑफ थिंकिंग है होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है होलोस, उससे लिया गया है, और उस होलोस शब्द का मतलब होता है एंटायर, फुल। माना किसी भी चीज को जब हम देखें तो उसका एंटायर व्यू देखें, उसको एक बिग पिक्चर के रूप में देखें, ना कि सिर्फ उसके एक पार्ट को देखें। बिग पिक्चर माना कोई भी सिचुएशन हमारे सामने हो या कोई भी व्यक्ति हमारे सामने हो, हम सिर्फ जो सामने सामने हमें दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर फोकस नहीं करें, उसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सभी पार्ट्स के ऊपर फोकस करके एक बिग पिक्चर के रूप में उसको देखना, उसके बारे में सोचना और फिर रिएक्ट करना, इस टाइप की थिंकिंग को कहा जाता है होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक थिंकिंग में तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई सिचुएशन अगर आपके सामने है तो डिटैच होकर एक सेकंड के लिए उस पूरी सिचुएशन को देखिए, और उस सिचुएशन को देखिए एक बिग पिक्चर के रूप में, माना उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या सिचुएशन उसमें इन्वॉल्व है, एक बिग पिक्चर के रूप में उसको देखना। फिर अपना ब्रेन यूज करके उस पिक्चर को हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं वो आइडियाज निकालना, और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के बाद सेकंड पिक्चर क्या बनेगी पहले मेंटली उसको विजुअलाइज करना, और उसके बाद उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना। इस टाइप की थिंकिंग को होलिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। होलिस्टिक थिंकिंग के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में 4 अंधे लोग रहते थे, और वो अंधे लोगों को, माना वो बचपन से अंधे थे और उन्होंने कभी भी कुछ भी देखा नहीं था। लोग उनको जो जो एक्सप्लेन करते थे वो उसके अकॉर्डिंग अपनी अजम्पशंस बनाते थे कि हाँ ये ऐसा होगा ऐसा होगा। तो एक दिन वहां पे वहां की जो राजकुमारी थी उसकी हाथी पे सवारी निकली, तो वो लोगों ने, जो 4 अंधे लोग थे, उन्होंने पूछा कि राजकुमारी कैसे यहां से गई। तो लोगों ने बोला हाथी पे गई। तो उन्होंने पूछा हाथी क्या होता है, तो वहां के गांव के लोगों ने उनको बताया कि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, वो किसी भी चीज को उठा के इधर से उधर फेंक सकता है। किसी ने तो उनको ये एक्सप्लेनेशन दिया, किसी ने कहा नहीं हाथी बहुत रॉयल जानवर होता है और वो बहुत मस्ती में चलता है, वो बहुत रॉयल है इसीलिए तो राजकुमारी उसके ऊपर बैठ के जाती है। तो उन लोगों को माना अलग अलग अजम्पशंस लगा रहे थे। कोई सोच रहा था कि नहीं वो तो बहुत ही ऐसे खराब जानवर होगा जो चीजों को उठा के इधर उधर फेंकता होगा, कोई सोचते होंगे नहीं वो बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इनोसेंट सा जानवर होगा तभी तो वो राजकुमारी को लेके जाते हैं। तो सारा दिन वो लोग इसी बारे में डिस्कस करते रहते थे, चारों लोग अपना अपना व्यू देते थे, कोई बोलता था ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो फिर वहां के गांव के किसी ने सोचा कि चलो इन लोगों को हाथी दिखा के लाते हैं ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि भाई हाथी कैसा होता है। तो उन चारों लोगों को लेकर वो लोग महाराजा के दरबार के बाहर गार्डन, वहां पे हाथी खड़ा था, तो उन लोगों को वहां पे लेके गए। तो उन्होंने बोला कि अभी आप लोग टच करके देख लो कि हाथी कैसा होता है। तो वो चारों लोग एक एक करके गए। जो पहला था वो उसने सिर्फ हाथी के पैरों को टच किया और उसने पैरों को देख के कहा कि ये हाथी तो बिल्कुल खंभे जैसा लगता है क्योंकि उसके मोटे मोटे पैर थे, उसने उन्हीं को टच किया। दूसरा जो व्यक्ति गया उसने क्या किया, उसने उसकी सूंड को पकड़ा और सूंड को पकड़ के उसने बोला नहीं ये तो किसी सांप जैसा दिखाई देता है। तीसरे ने उसकी पीठ को हाथ लगाया तो उसने कहा कि वो दीवार जैसा दिखाई देता है। चौथे ने उसके कानों को हाथ लगाया, उसने बोला कि ये तो किसी पंखे जैसा दिखाई देता है। तो उन चारों ने क्या किया, उन चारों ने उसी अजम्पशन को ले लिया, किसी ने कहा कि वो सांप जैसा है, किसी ने कहा दीवार जैसा, किसी ने खंभे जैसा, लेकिन इन चारों में से भी किसी भी तरह से हाथी नहीं है। अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सिर्फ उस हाथी के एक एक पार्ट को देखा, उसे एक बिग पिक्चर के रूप में नहीं देखा। अगर उन चारों ही पार्ट्स को इन्वॉल्व करके वो एक हाथी को पूरी तरह से देखते तो उन्हें समझ आता कि वो कितना बड़ा एनिमल है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यही ये इस टाइप की जो थिंकिंग होती है लीनियर थिंकिंग, माना सिर्फ एक पार्ट को देख के हम एनालाइज कर लें कि हाँ ये ऐसा होता है। तो ये एक एग्जांपल देते हैं होलिस्टिक थिंकिंग के बारे में कि हर पार्ट को हमें अच्छे से देखना है। और होलिस्टिक थिंकिंग जो है वो आजकल हर फील्ड में यूज होती है। सबसे पहले अगर हम हेल्थ केयर के फील्ड को लेते हैं, हेल्थ केयर में कहा जाता है होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में होलिस्टिक थिंकिंग कैसे यूज होती है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सिर्फ उस एक पार्ट को आपको ट्रीट नहीं करना है जिसमें डिसीज है, बल्कि उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हर टाइप से ट्रीटमेंट करना, उसको कहा जाता है होलिस्टिक टाइप ऑफ थिंकिंग। तो जब कोई पेशेंट आता है उसको हर टाइप से ट्रीट करना, माना क्या, जैसे पेशेंट जो कंप्लेंट लेके हमारे पास आया है उसकी वो बीमारी और कहां से रिलेटेड हो सकती है। माना उसकी कई बार कोई हेडेक की कंप्लेंट लेके आया है तो हेडेक मीन्स जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ किसी मेडिकल रीजन से ही हेडेक होगा, कई बार टेंशन के कारण हेडेक होता है, कई बार फैमिली में स्ट्रेस से उसके कारण उसको हेडेक होता है। तो उसको उस तरह से एनालाइज करके उस तरह का भी ट्रीटमेंट देना, जैसे हमारे हॉस्पिटल में स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए रेफर करते हैं जब किसी का ऐसा कंप्लेंट हमें दिखाई देता है, या फिर नीचे हमारा जो कैड का प्रोग्राम चल रहा है उसे होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। माना पेशेंट को सिर्फ एक, उसको सिर्फ हार्ट ट्रीटमेंट के लिए नहीं, हार्ट ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको क्या डाइट लेना चाहिए, उसको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और कैसे उसको अपने आप को स्पिरिचुअली मेंटली भी स्ट्रांग करना चाहिए उस डिसीज को रिकवर करने के लिए। तो इसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है हेल्थ केयर में। ऐसे ही होलिस्टिक अप्रोच लाइफ के हर पार्ट में, जैसे होलिस्टिक अप्रोच इन पेरेंटिंग कहा जाता है कि बच्चे को जब बड़ा करते हैं तो सिर्फ उसका फिजिकल वेलबींग नहीं हमें देखना है, उसका सोशल, वो माना फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, वो मेंटली भी स्ट्रांग रहे, सोशली भी स्ट्रांग रहे, हर तरह से उसको देखना, उसको कहा जाता है होलिस्टिक पेरेंटिंग। ऐसे ही होलिस्टिक ईटिंग कहा जाता है। होलिस्टिक ईटिंग माने बैलेंस, हाँ बैलेंस डाइट, होलिस्टिक डाइट मीन्स बैलेंस डाइट भी, प्लस हम जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ उसके एक पार्ट पे नहीं होना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है, उसके सभी पार्ट्स पे होना चाहिए कि ये न्यूट्रिशियस कितना है, इससे कैलोरीज कितनी मिलने वाली। फर्स्ट हमें ये करना है, हमें पूरा टाइम तो नहीं करते ना, फर्स्ट जब भोजन आया है प्लेट में नहीं, उसको हमें फिर खुद जज करना है कि हमें कितना टाइम उसके ऊपर देना है। और डेली करने की जरूरत नहीं है ना, हम अपना एक डाइट चार्ट बना सकते हैं, तो उसको होलिस्टिक डाइट कहा जाता है। ऐसे ही होता है होलिस्टिक थिंकिंग इन स्पिरिचुअलिटी ना, ब्राह्मण जीवन में हम लोग होलिस्टिक थिंकिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, ब्राह्मण जीवन के लिए कैसे है होलिस्टिक थिंकिंग, त्रिकालदर्शी राय बाबा जो एक वर्ड यूज करते हैं त्रिकालदर्शी, वो ब्राह्मण जीवन के लिए एक होलिस्टिक थिंकिंग है। और कैसे ब्राह्मण जीवन जो हमारा है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसके साथ और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, माने ये तो एक स्पिरिचुअल लाइफ हम एक पार्ट देख रहे हैं, अगर इसको एक बिग पिक्चर के रूप में देखना हो तो और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सोशल लाइफ, सबसे पहले तो फिजिकल, स्पिरिचुअल के साथ साथ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल, हर पार्ट इन्वॉल्व है। हमें सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करने की तरफ ध्यान देते हैं, कई बार स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ की ओर हमारा ध्यान नहीं होता। फिजिकली हम लोग या तो कोई ना कोई हमें बीमारी हो जाती है, फिजिकली हम लोग वीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ एक ही पार्ट के ऊपर है कि हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, तो फिजिकल पार्ट हमारा कई बार रह जाता है। और अगर फिजिकल की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, माना अच्छी डाइट नहीं लेंगे या फिर वॉकिंग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो फिजिकल पार्ट में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई डिसीज हो गई, कुछ हो गया, तो वो फिर अफेक्ट करेंगे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को। माना कोई बीमारी है तो फिर हमें योग करने में भी मुश्किल, अमृत वेला करने में भी, सब कुछ वो उसको अफेक्ट करेगी। ऐसे ही हमारी पर्सनल रिलेशनशिप या फिर जिसे कहे सोशल लाइफ, जो हमारी है सोशल लाइफ, माना जिन भी लोगों के साथ हम कनेक्टेड है, चाहे वो हम अपने रूममेट्स के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे हम अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे लोगों के साथ कनेक्टेड है, या फिर सोशली पूरे वर्ल्ड के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। हम सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन जब हम सोशल लाइफ में जाते हैं तो वो वहां पे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वहां पे हमारी रूममेट्स के साथ अच्छी नहीं बनती, या फिर जब हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो हमारी स्पिरिचुअलिटी वहां डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं देती, तो फिर इसको हम कहेंगे कि हमारी सिर्फ हमने एक ही पार्ट को फोकस किया हुआ है कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, लेकिन हमारी सोशल लाइफ की ओर हमने ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हर पार्ट को इन्वॉल्व करना, क्योंकि जिस भी पार्ट को मिस करेंगे, मान लीजिए आपने सोशल को मिस किया, आपने माना सोशली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, किसी के साथ भी ज्यादा आपका अच्छा बोलना या ये सब नहीं है, तो वो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी लाइफ में लेके आता है। जैसे कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में होते हुए हम हमारी फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि शायद फैमिली से हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनके साथ हमें बात भी नहीं करनी, उनकी किसी प्रॉब्लम में हमें जाना भी नहीं, हेल्प भी नहीं करनी, तो उसमें क्या है, हम अगर इतना डिस्कनेक्ट उनसे हो जाएंगे तो उन लोगों को जब हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर हम अवेलेबल नहीं है, तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन उनके हमारी तरफ आएंगे जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट करेंगे। तो होलिस्टिक थिंकिंग इन स्पिरिचुअलिटी मतलब हमें हर पार्ट को देखना है कि हमारी फिजिकल लाइफ भी स्ट्रांग हो, सोशल लाइफ भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी हम स्ट्रांग हो कंडीशंस को फेस करने के लिए, इंटेलेक्चुअली भी हम स्ट्रांग हो, हर टाइप की थिंकिंग को इन्वॉल्व करना, तो इसको कहेंगे स्पिरिचुअल होलिस्टिक थिंकिंग इन स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे डिफरेंट में हम देखें तो लाइफ के हर स्टेप में हमें होलिस्टिक थिंकिंग हम यूज कर सकते हैं। और होलिस्टिक थिंकिंग को लाइफ में लाने के लिए क्या एक की पॉइंट है कि किस तरह से हम होलिस्टिक थिंकिंग को लाइफ में ला सकते हैं, क्या करें तो हम होलिस्टिक थिंकिंग हमारी बन सकती है, क्या करना होगा, माना अभी से हम क्या चेंज करें तो हमारी थिंकिंग होलिस्टिक हो सकती है। बिग पिक्चर देखे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट, इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन, एलिवेशन, चेंज योर पर्सपेक्टिव, राइट, एटीट्यूड चेंज करना होगा हमारा, जो हम आउटलुक है हमारा दुनिया की तरफ या सिचुएशंस की तरफ, उसको चेंज करना होगा। जैसे कहते हैं दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तभी हम चीजों को बिग पिक्चर के रूप में देख पाएंगे। अभी हमारा नजरिया है कि जो सामने सामने, माना सभी का नहीं, कई लोगों का होता है कि जो सामने सामने दिखाई दे रहा है उसी पे फोकस। तो हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना होगा, हमारा वर्ल्ड के लिए आउटलुक चेंज करना होगा, तभी हम होलिस्टिक थिंकिंग को लाइफ में ला सकते हैं। और होलिस्टिक थिंकिंग आने से लाइफ में क्या क्या फायदा होगा, क्या फायदा है कि हम होलिस्टिकली सोचे? अगर सबसे पहले लाइटनेस, लाइफ में स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, लाइट हो जाएंगे हम, हल्के हो जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि हम एक ही चीज पे फोकस करते जा रहे हैं, बाकी सब चीजें जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही, हमारी ऐसे ही रह रही है। तो इसलिए स्ट्रेस कम हो जाएगा, लाइट हो जाएंगे हम। और क्या फायदा है? प्लेजर, फील गुड हो जाए, और जीवन में सक्सेस हमें मिलेगी, रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। जब हम हर पार्ट की ओर ध्यान देंगे तो हमारे रिलेशंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, सभी का सहयोग मिलेगा, रिलेशंस फियरलेस हो जाएंगे, और हम हर सिचुएशन में अच्छे से जस्टिस दे सकते हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम एक बिग पिक्चर के रूप में हर चीज को एनालाइज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होलिस्टिक थिंकिंग से जो हमारी लाइफ में, हमारी सोचने का एकदम तरीका चेंज हो जाता है। कई सिचुएशंस में हमें लगता है कि इस बात का सिर्फ ये या ये दो सॉल्यूशंस ही हो सकते हैं, लेकिन कई बार उससे अलग भी कोई सॉल्यूशन होता है, और वो तब हमें मिलता है जब हम एक बिग पिक्चर होलिस्टिकली उस चीज को देखते हैं। तो एक लास्ट एक स्टोरी से इस चीज को, इस थिंकिंग को फिनिश करते हैं। एक बार एक साहूकार होता है, एक बहुत बूढ़ा साहूकार होता है, एक किसान उसके पास लोन मांगने के लिए जाता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, और उस किसान की एक बहुत ब्यूटीफुल बेटी होती है, तो वो बेटी को साथ में लेके साहूकार के पास जाता है। तो साहूकार उसको लोन दे देता है, पर वो उसकी बेटी को देख लेता है। तो वो उसको देखता है कि किसान तो बहुत गरीब है और वो मेरा लोन कभी भी चुका नहीं पाएगा। तो किसान को बोलता है कि मैं आपका सारा लोन माफ कर दूंगा, आप आपकी बेटी को बोलो कि मुझसे शादी कर ले। तो वो किसान बोलता है कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और मैं किसी भी तरह से आपका लोन चुका दूंगा। तो फिर वो साहूकार बोलता है कि नहीं ठीक है, मैं आपको एक चॉइस देता हूं, हम लोग एक ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं वो लोग जहां पे खड़े होते हैं ना, वहां पे जमीन पे बहुत सारे सफेद और काले पत्थर गिरे हुए होते हैं। तो वो क्या कहता है साहूकार, वो बोलता है कि मेरे पास एक बैग है, मैं इसमें एक काला पत्थर डालूंगा और एक सफेद पत्थर डालूंगा, और आपकी बेटी को इसमें से एक पत्थर निकालना होगा। अगर वो काला पत्थर निकालेगी तो मैं आपका लोन माफ कर दूंगा और आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन अगर वो सफेद पत्थर निकालेगी तो मैं लोन माफ कर दूंगा लेकिन उसको शादी नहीं करनी होगी मुझसे। तो किसान बोलता है ठीक है ये करते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो नीचे से दो पत्थर उठा के उसमें डालता है। तो वो लड़की देख लेती है कि उसने नीचे से जो दो पत्थर उठाए दोनों ही काले पत्थर हैं, और दोनों ही काले पत्थर उसने बैग में डाले हैं। तो अभी लड़की के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकती है? अगर ऐसे हम सिंपल सरफेस थिंकिंग से देखेंगे तो हमें दो ही ऑप्शन दिखते हैं कि या तो वो लड़की तुरंत बोले कि नहीं आपने तो दोनों ही ब्लैक पत्थर निकाले, या फिर वो हाथ डाल के दोनों पत्थर बाहर निकाले और उसको एक्सपोज कर दे कि दोनों ही काले पत्थर हैं। पर वो क्या करती है, वो थोड़ा क्रिएटिवली सोचती है, वो हाथ डालती है, एक पत्थर निकालती है और उसको तुरंत जमीन पे फेंक देती है, और नीचे ऑलरेडी बहुत सारे काले और सफेद पत्थर गिरे होते हैं। तो अभी पता नहीं चलता कि उसने बैग से जो पत्थर निकाला वो कौन सा था। तो वो साहूकार को बोलती है कि अरे ये पत्थर तो गिर गया, अभी आप क्या करो, इसमें देखो जो पत्थर बाकी होगा ना, यानी उससे दूसरे कलर का पत्थर मैंने निकाला था, उसके अंदर तो ब्लैक ही है क्योंकि उसने ऑलरेडी दोनों ब्लैक डाले थे। तो इस तरह से क्रिएटिवली उसने अपने आप को सिचुएशन से बचा लिया। तो इस तरह से लाइफ में जितना हम होलिस्टिक थिंकिंग को यूज करेंगे, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ओके, ओम शांति।